टाइम्स एफएम 90.6 का साथै देशका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट हामीलाई सुनिरहनु भएको सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म किन्जल गुरुङको नमस्कार। भारतको स्वतन्त्रताको 75 वर्ष पुगेको अवसरमा इन्डिया एट 75 आजादीको अमृत महोत्सव देश तथा विदेशमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरी अत्यन्त गर्व र उल्लासका साथ मनाइरहेको छ। सन् 1947 अगस्त 15 दिन भारतले ब्रिटिस शासनबाट मुक्ति पाएको थियो र आज त्यही स्वतन्त्रता पाएको 75 वर्ष पुग्दा भारतले आफ्नो रूप फेरिसकेको छ। भारतको आजादीको 75 वर्ष पुरा भएको अवसरलाई अझ यादगार बनाउनका निम्ति यो महोत्सव आयोजना गरिएको हो। यो महोत्सव विशेष गरी देशको स्वतन्त्रताको लागि आफ्नो बलिदान दिने सेनाहरू र साथै भारतको सम्पूर्ण नागरिकहरूको लागि समर्पित छ, जसको अपरिहार्य परिश्रम, देशप्रेम र सुसङ्गत इच्छा शक्तिको कारण प्रगतिशील भारत आफ्नो विकास यात्रामा निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेको छ। र यसै गरी नेपालमा पनि भारतीय राजदूतावास काठमाडौँले यस आजादीको अमृत महोत्सव भव्य रूपमा मनाइरहेको छ र त्यसैको अन्तर्गत विविध कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गरिरहेको छ। नेपालको नागरिकहरू साथै नेपालमा बसोबास गरिरहेका भारतीय नागरिकहरूलाई भारतको विशेषता र वर्तमान समयमा भारतले गर्दै आएको प्रगति र प्राप्त गरिरहेको उल्लेखनीय उपलब्धिहरूको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यको साथ भारतीय दूतावास काठमाडौँले यो एउटा पोडकास्ट सिरिज सुरु गरेको छ। यो पोडकास्ट सिरिज अरिजिनली गरिएको थियो भारतीय दूतावास काठमाडौँमा र तपाईँहरूले अब सुन्नुहुने पोडकास्टमा चाहिँ म भारतीय राजदूतावास काठमाडौँको सत्येन्द्रजीको भूमिका निर्वाह गर्नेछु र साथै यहाँ आउनुभएको अतिथि भारतीय नागरिक भएको हुनाले उहाँले आफ्नै मातृभाषामा मेरो प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहुनेछ। यो पोडकास्ट सिरिजमा हामी विभिन्न क्षेत्रका अतिथिहरूलाई निम्त्याएर उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँहरूको अमूल्य विचारहरू लिनेछौँ। र आज हाम्रो माझ एक अत्यन्त विशेष अतिथि हुनुहुन्छ, भारतको सेलिब्रिटी शेफ सञ्जय रायनाजी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। सञ्जय रायनाजी आफ्नो क्षेत्रको एक लोकप्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँले कश्मीरी खानालाई देश तथा विदेशमा लगेर यसलाई एउटा विशेष पहिचान र लोकप्रियता दिनुभएको छ। कश्मीर भारतको एक सबैभन्दा सुन्दर ठाउँहरूमा पर्न सफल क्षेत्र हो। भारतको नर्थ वेस्ट भेगमा पर्ने यो ठाउँलाई पक्कै पनि धरतीमा स्वर्ग भन्न सकिन्छ। प्राकृतिक हिसाबले अत्यन्त सुन्दर यो ठाउँलाई यहाँको कल्चर, परम्परा, रीतिरिवाजहरूले थप श्रृङ्गार गरिदिएको छ। साथै यहाँको बासिन्दाहरू पनि अत्यन्त नम्र, दयालु र मिलनसार स्वभावको हुन्छन् र यस्तै यस्तै कुराहरूले कश्मीरलाई थप सुन्दर बनाएको छ र यही ठाउँलाई आफ्नो घर भन्नुहुने सञ्जय रायनाजीसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सञ्जयजी नमस्कार। भारतीय राजदूतावास काठमाडौँ र साथै नेपालमा बसोबास गर्दै आउनुभएको मेरो सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ।
नेपालकै हर देशवासीको मेरा प्यार भरे नमस्ते।
हामी भन्ने गर्छौँ नि कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा उनको बाल्यकालको समय एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर, किनभने यो समयमा हामी निरन्तर रूपमा हाम्रो भविष्यको लागि तयारी गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसैले म आजको हाम्रो कुराकानी पनि सुरुवात गर्न चाहन्छु तपाईँको बाल्यकालबाट, तपाईँको परवरिश र तपाईँको परिवारबाट।
जरुर, बचपन त मेरा बहुत खूबसूरत रहा है, मैं ये जरूर कहूँगा। एक तो आपके माता पिता आपका वैसे ही आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बना देते हैं और फिर अगर वो बचपन कश्मीर में हो तो वो और खूबसूरत हो जाता है, सोने पर सुहागा हो जाता है। तो मेरा बचपन सारा कश्मीर में, श्रीनगर में गुजरा है और मैंने वहाँ अपनी एजुकेशन, इनिशियल एजुकेशन बर्न हॉल स्कूल है वहाँ से की। उसके बाद वहाँ से बेसिक कॉलेज करके फिर मैं दिल्ली आया अपना होटल मैनेजमेंट करने।
हजुर संजय जी, तपाईले त्यो 80 को दशक को बेला में पनि यो होटल इंडस्ट्री जस्तो अलि अनकन्भेन्सनल मानिने पेशा में अघि बढ्ने हिम्मत देखाउनु भयो। अनि मलाई जिज्ञासा लागेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा लाग्न चाहिँ तपाईले कसरी प्रेरित हुनुभयो र त्यस समयमा पनि यो सबै कुरा चाहिँ कसरी सम्भव भयो? किनभने सामान्यत भारतमा सबै आमा बुबाले आफ्नो छोराछोरीलाई इन्जिनियरिङ अथवा मेडिकल फिल्डमा पठाउन चाहन्छन्, तर तपाईँको केसमा इट्स डिफरेन्ट, सो यो कसरी भयो?
बहुत सही बोला आपने, लेकिन इसमें यह भी है कि आपके बहुत जगह आपके माता पिता ऐसे भी होते हैं कि वो ये भी कहते हैं कि जो आप करना चाहें आप करिए, हम आपके साथ हैं। तो और अनकन्वेंशनल, यस, उस टाइम पे ऐसा भी हुआ कि बहुत लोगों ने ये भी मुड़के बोला कि क्या और कुछ करने को मिला नहीं, लेकिन हुआ ऐसा कि मेरे फादर भी टूरिज्म गवर्नमेंट में काम करते थे, तो यूज इन द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। तो बचपन से हम देखते आ रहे थे, वो एक तो हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म, कश्मीर भरा हुआ है इन दोनों चीज़ों से। घर में भी हमारे ये टूरिज्म ऐसा चल रहा था कि माय फादर वाज देयर, तो मुझे लगता है वो आस्ते 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 वो बढ़ गया था अपने में। एंड मुझे याद है कि उस टाइम पे मेरी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन हुई थी, तो बट समहाउ और दी अदर ये ऑप्शन मुझे हर वक्त भाता था। प्रॉबली ऑल्सो कि इस इंडस्ट्री के लिए आपको एक एक्सट्रोवर्ट किस्म की पर्सनैलिटी चाहिए होती है, मिलनसार चाहिए होता है, यू कांट बी अ शाय पर्सन। तो मुझे लगता था कि मैं इसके लिए सूटेबल हूँ। एंड अफकोर्स माता पिता ने बहुत साथ दिया, हर वक्त साथ दिया।
तपाईँको यो काठमाडौँको पहिलो भ्रमण हो या यसभन्दा अगाडि पनि तपाईँ काठमाडौँको यात्रामा आइसक्नु भएको छ, र साथै तपाईँलाई चाहिँ नेपाल कस्तो लागिरहेको छ र यहाँको बासिन्दा नेपालीहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँको विचार धारणाहरू के रहेका छन् त्यो पनि बताइदिनुहोस् न।
काठमाडौँमा कुछ 15 साल पहले आया था, उसके बाद मैं 2 साल पहले भी आया था, और सच बात बोलूं कि मेरा बस चले तो मैं हर 3 महीने में आऊं, क्योंकि यू नो बैक होम इन इंडिया, हमने कभी हिंदुस्तान और नेपाल में फ़र्क ही नहीं सोची है, हिंदुस्तानियों में और नेपालियों में कभी कोई फ़र्क नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने हम काम इतना इकट्ठे करते हैं, हमारी बोलचाल एक जैसा है, हमारा रहन सहन एक जैसा है, हमारा कल्चर एक जैसा है, हमारी रिलीजियस बिलीफ टू सम एक्सटेंट एक जैसी है। तो आई लव नेपाल, आई जस्ट लव नेपाल, आई लव नेपाल, आई लव द नेपालीज पीपल आल्सो।
कश्मीरको बारेमा भन्ने गरिन्छ कि यदि धरतीमा कतै स्वर्ग छ भने त्यो कश्मीर हो भनेर, र त्यसै गरी अर्कोतर्फ नेपालमा सगरमाथा माउन्ट एभरेस्ट रहेको छ, र साथै कश्मीर उपत्यका र काठमाडौँ उपत्यका दुवै हिमालको काखमा अवस्थित छ, र तपाईँ चाहिँ कश्मीरबाट हुनुहुन्छ। सो तपाईँलाई कश्मीरबाट काठमाडौँ आउनुहुँदाखेरि तपाईँले यो दुईवटा सुन्दर ठाउँहरूमा चाहिँ के समानता भेट्नुहुन्छ, भौगोलिक दृष्टिकोणबाट पनि र साथै खानपानको दृष्टिकोणबाट पनि?
पहले मुझे तो दोनों ही जगहों में ऐसा लगता है कि ऋषि मुनियों की जगहें हैं। कश्मीर को तो हम कहते ही हैं ऋषि मुनियों का। यहाँ भी मैंने कल एक ट्विटर पे एक पिक्चर देखी, किसी ने डाली हुई थी सुबह 6 बजे की, और लिखा था मॉर्निंग इन काठमांडू। तो वो कुछ मंदिरों के बाहर फूल ही फूल लगे हुए थे, तो मैंने उसी टाइम मन बना दिया कि मुझे एक ना एक मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, एक नेपाल काठमांडू में एक वॉक पे जाना है। सिमिलैरिटीज़ की आप बात करते हैं तो देखिए, हमारा ज्योग्राफी तो है ही, कश्मीर और यहाँ की इतनी सिमिलर, पहाड़ी पहाड़ है, फर्स्ट क्लास मौसम एक जैसा, हवा एक जैसी। उसको छोड़ के हमारे खान पीन का स्टाइल, खाने पीने का सारा हमारा, हमें क्या अच्छा लगता है, हमें राइस अच्छी लगती है, यहाँ लोगों को राइस बहुत अच्छा लगता है, वी आर बिग मीट ईटर्स, हमें स्पाइसी फूड अच्छा लगता है, यहाँ स्पाइसी फूड अच्छा लगता है, हम खाने के बहुत शौकीन हैं, ये खाने के बहुत शौकीन हैं। सो बहुत सिमिलैरिटी।
हजुर हजुर, पक्कै पनि। नेपाल चाहिँ विश्वमा आफ्नो विविध संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज, चाडपर्व, परम्परा र खास तौरमा आफ्नो खानपान, आफ्नो फुड कल्चरको लागि पनि प्रख्यात छ, र तपाईँले पनि भर्खरै नेपालको खानाको बारेमा कुरा गर्नुभयो। सो मलाई चाहिँ नेपाली फुड कल्चरको बारेमा तपाईँको आफ्नो विचार बताइदिनुहोस् न।
मैंने तो एक वो नेवारी थाली खाई है, एंड आई हैव लव्ड इट। तो इतना है कि इतना मुझे पता है कि मैं जब भी किसी को मिलूंगा जो काठमांडू और नेपाल आ रहे हैं, तो उनको बहुत जरूर बोलूंगा कि ये करना और नेवारी।
संजय जी, एउटा भनाइ छ नि, टू ईट इज अ नेसेसिटी बट टू ईट इंटेलिजेंटली इज अ आर्ट भनेर। सो यो कुरामा चाहिँ तपाईको के धारणा छ त, इज कलिनरी आर्ट अ फाइन आर्ट?
बिल्कुल, एवरी आर्ट इज एन आर्ट, इज अ फाइन आर्ट इन इटसेल्फ। और कलिनरी आर्ट जो है वो एक डेफिनेटली एक फाइन आर्ट है, क्योंकि इतना ही नहीं है कि आप क्या बना रहे हैं, ये एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये है कि आप जो बना रहे हैं आप वो खिला रहे हैं, तो आपको एक तो ये देखते हैं, देखना जहन में रखना है कि आप बना क्या रहे हो, वो कैसे बनना है, स्वाद में अच्छा होना चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, सेहत में अच्छा होना चाहिए। और इस तरह जब आप देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो जायके में अच्छा होना चाहिए, वो हर किस्म से बैलेंस करना चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स कैन नॉट बी डन यू नो अनलेस यू डोंट टेक एन आर्टिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स इट। तो जरूरी है।
सो संजय जी, तपाईको विचारमा चाहिँ यो होटल इंडस्ट्रीमा अझ भनौ स्पेशली एउटा शेफको रूपमा चाहिँ राम्रो करियर बनाउन सकिन्छ त, अथवा आजकलको हाम्रो युवा वर्गले चाहिँ यो फिल्डमा आएर एउटा सुनिश्चित भविष्यको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नु हुँदैन, र अहिलेको युवाहरूले चाहिँ यो पेसामा सफलता हासिल गर्न कतिको सम्भव छ त?
एक लाइनमा जवाफ दूंगा आपको, स्काई इज द लिमिट। तो मैं समझता हूं कि आप, मैं बड़े बड़े शेफ्स के नाम लूंगा और आप थोड़ा रिसर्च करें और आप ये समझ जाएंगे कि फेम, नेम, वेल्थ, रिस्पेक्ट, आप जो देखें वो इतना मिला हुआ है कि मतलब ये बड़ी सिंपली प्रूव हो जाता है कि ये कितना अच्छा प्रोफेशन है। और आज का जो यूथ है उनको ऑल्सो बिकॉज फूड आज की तारीख में बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, और कोई भी बाहर आज जाता है तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार है। आज मैं अल्जीरियन खाना खाऊंगा, कल मैं थाई खाना खाऊंगा, कल मैं इंडियन खाऊंगा, कल मैं यू नो। तो अपॉर्चुनिटी इतनी बनी हुई है कि आज का जो यूथ है दे शुड कम आउट और उनको ये प्रोफेशन में आना चाहिए, क्योंकि इस प्रोफेशन में अंदर आके भी उनके पास इतनी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्पेशलाइजेशन की, वो आए तो लाइक आई सेड स्काई इज द लिमिट।
यो हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में यो पेशा में संलग्न होना चाहने इच्छुक युवाहरू में चाहिँ कुनै प्रकारको विशेष सीप या खुबिया अथवा कुनै खास कलात्मकता होना जरूरी हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई, र साथै तपाई चाहिँ नेपालको युवाहरूलाई यो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आउनको लागि के सलाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ?
देखिए, सबसे पहले तो किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए आपका मन और आपकी मर्जी होनी चाहिए। कोई फौज ज्वाइन करता है तो वो फौज ज्वाइन करना चाहता है, तो अगर तो आप जरा सा भी हॉस्पिटैलिटी ओरिएंटेड इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कर देना चाहिए सबसे पहले, चाहे आप वो किचन में करें, चाहे आप वो फ्रंट ऑफिस में करें, चाहे आप वो सर्विस में करें। और एक बार आप जब एक फॉर्मल ट्रेनिंग इंडिया में, नेपलीज मेरे क्लासमेट्स रह चुके हैं जिन्होंने मेरे साथ होटल मैनेजमेंट किया है, तो लाइक आई सेड एक मन एक मर्जी वो होनी चाहिए, और कुछ करने की जो इच्छा होती है वो ज़रूर होनी चाहिए हर इंसान में, बिकॉज इसमें खासकर कलनरी में आपको क्रिएटिव होने का बहुत स्कोप है। तो अगर आपको लगता है आप क्रिएटिव हैं और आप लॉन्ग आवर्स काम कर सकते हैं, ये भी मैं बोलूँ, देयर इज ऑलवेज अ फ्लिप साइड टू एवरीथिंग, और आप क्रिएटिवली अपने को अपनी एक जगह बनाना चाहते हैं, तो खासकर अलग से अगर हम नेपाल की यूथ की बात करें तो आप वर्ल्ड वाइड कहीं ट्रेनिंग लेके क्या पता आप वापस आके यहाँ या वर्ल्ड का खाना ला के दें, और या वर्ल्ड वाइड जाएं और नेपाल का खाना ला के दें वहाँ। सो देर इज सो मच टू डू। जहाँ तक मेरी एडवाइस की बात है, मैं हर वक्त ये कहता हूँ कि जो आप करने जाएं उसे पूरा करें सबसे पहले, कि हर काम में रास्ते में रुकावटें आती हैं तो आपको घबराना नहीं चाहिए उन चीज़ों से। एक टाइम हमें भी लगता था कि हम भी 16-16, 18-18 घंटे काम करते थे, आज भी करते हैं, तो फिर हम कहते थे कि क्या ये करना है, लेकिन हर सुबह हम कहते थे आज एक नई चीज़ सीखनी है, और हर सुबह पूरा दिन ऐसे निकल जाता था, हर शाम को फिर थक जाते थे, लेकिन आई थिंक वो रेजिलियंस थी थोड़ी सी जिससे हम गुजर चुके, तो आज उस हिसाब से कहीं हम पहुँचे।
पक्कै पनि एकदमै अद्भुत यात्रा रहेको छ तपाईँको।
जी जी बिल्कुल।
संजय जी, कश्मीर आफ्नो प्राकृतिक सुन्दरताको लागि त एकदमै प्रख्यात छ, तर त्यसको साथसाथै कश्मीर चाहिँ त्यहाँको विशिष्ट खानाको लागि पनि एकदमै प्रसिद्ध छ। त्यहाँको फुड कल्चर र खानासँग जोडेको विविध संस्कृतिहरूको बारेमा पनि सबैलाई अवगत नै छ। र हामीलाई जान्न इच्छा लागेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि, अब कश्मीरमा त खानेकुराको विविध परिकारहरू बनिन्छन् है, अब त्यो सबै व्यञ्जनहरूमध्ये भेज र नन भेज गरी तपाईँको आफ्नो फेभरेट छान्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँ के छान्नुहुन्छ? यस्तो कुनै खानाको परिकार जुन चाहिँ तपाईँलाई असाध्यै मनपर्छ र किन?
लेकिन मैं पहले बताऊं कि कश्मीरी खाने की खासियत एक तो ये है कि उससे एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात निकलती है कि कश्मीरी खाना एक कॉम्बिनेशन है कश्मीरी मुस्लिम, कश्मीरी पंडित और कश्मीरी डोगरी खाने का। तो सबसे पहले तो ये एक मिलाप हो जाता है लोगों का, और उस वो जो भाईचारा और वो जो प्यार होता है वो सारा प्यार इस खाने में आ जाता है। तो सबसे अच्छी बात मुझे कश्मीरी खाने की ये रहती है कि देर इज़ अ मुस्लिम क्विजीन, देर इज़ अ कश्मीरी पंडित क्विजीन, देर इज़ अ डोगरी क्विजीन, देर इज़ अ लद्दाखी क्विजीन ऑल्सो। तो हमारे जितने लोकल मुस्लिम भाई हैं वो हर वक्त हमारे पास आते थे और कहते थे संजय आज ये खिलाओ, वो कश्मीरी पंडित डिश कोई। हम हर वक्त अपने मुस्लिम फ्रेंड्स के पास जाते हैं और कहते हैं हमें आज ये गुश्तावा खिला दीजिए, यू नो, जो अपने अपने क्विजींस हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड वो जो पूरा क्विजीन है एक बहुत अच्छा क्विजीन है, बहुत मेहनत वाला क्विजीन है। मेरी पर्सनल चॉइसेस कोई एक डिश थोड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन हमारा एक सोल फूड है कश्मीरियों का, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो, और वो है हाक, जो हाक साग है। तो आप किसी भी कश्मीरी को सिर्फ हाक दें और थोड़ा चावल दें, वो आप बाकी सब कुछ छोड़ देगा, लेकिन ये चाहिए। तो दैट इज़ डेफिनेटली वन माई फेवरेट्स। ये जो डिश है ये हर कश्मीरी की फेवरेट है। हाँ, उसके बाद छोड़ के मुझे लगता है मुझे गुश्तावा बहुत अच्छा लगता है, मुझे मुस्लिम क्विजीन से गुश्तावा, मुझे कश्मीरी पंडित क्विजीन से जो रोगन जोश है, नो अनियन, नो गार्लिक, नो टमेटो, वो बहुत अच्छा लगता है। और जो हम दमालू बनाते हैं, आई थिंक वी मेक द मोस्ट ऑथेंटिक दमालू। ये दो तीन चार चीजें हैं जो मेरी पर्सनल फेवरेट।
संजय जी, तपाईले दम आलुको कुरा गर्नुभयो र जब हामी आलुको कुरा गरिरहेको छौँ मलाई चाहिँ एक ब्रिटिस अथर एलेक्जेन्डरको भनाइ याद आयो। उहाँले भन्नुभएको थियो, इफ अ म्यान रियली लाइक्स पोटेटोज हि मस्ट बी प्रिटी डिसेन्ट सर्ट अफ फेलो भनेर। र आलुको कुरा होस् अनि कश्मीरको दम आलुको कुरा नहोस् त्यो त हुनै सक्दैन, तर मेरो प्रश्न चाहिँ यो छ कि कश्मीरी दम आलु र भारतको अन्य ठाउँमा बनाइने दम आलुमा चाहिँ के फरक छ र यो दुईटा दम आलुको स्वादमा हुने अन्तरको कारण चाहिँ के होला?
पहिले मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा एक छोटी सी बात पे कि आपने हर जगह का दम आलू नहीं खाया है। आपने कहीं दम आलू खाया है, कहीं आलू दम खाया है, कहीं आलूर दम खाया है, या कहीं किसी और नाम से खाया है। सो हर रीजन में अपनी रेसिपी से बनता है और हर एक का अपना अपना एक नाम है। हम ये कहते हैं कि ऑथेंटिक दम आलू जो है वो कश्मीर से बनता है, वो भी कश्मीरी पंडित क्विजीन से बनता है। तो ये एक बहुत मेहनत वाली डिश है, बहुत सारी मेहनत वाली, इसमें एक्चुअली बहुत मेहनत लगती है। और इसे बॉयल किया जाता है, इसे फ्राई किया जाता है, इसे फिर प्रिक किया जाता है, और फिर इसे एक ग्रेवी में कुक किया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लहसुन नहीं है, प्याज नहीं है, टमाटर नहीं है, और उसके बाद भी आप एक यू नो एक इसका सॉस बनता ही है। तो दैट इज़ ट्रू फॉर जितना भी कश्मीरी पंडित खाना है, वो अनियन और गार्लिक और टमाटो के बगैर बनता है। अब देखिए ये कितनी गजब की बात है। और जो मुस्लिम खाना है वो गार्लिक अनियन के बगैर बन ही नहीं सकता है, गार्लिक अनियन या टमेटो वो ज़रूरी चाहिए। तो ये जब मिल जाते हैं तो हम हरकत कहते हैं कश्मीर में, हम सब लोग साथ हैं। और जब सब साथ चल के चलते हैं तो एक ऐसा आपके सामने एक कलरी फेयर आ जाता है।
हामी सामान्यतः देखिरहेको हुन्छौँ कि हरेक सेफको चाहिँ खाना बनाउने आफ्नो एउटा अलग्गै तरिका हुन्छ, र अब हामीले बाहिरी रूपमा हेर्दाखेरि त एउटै खालको इन्ग्रेडियन्ट्स हुन्छ, एउटै खालको सामानहरू हुन्छ, तर जब त्यो खाना बनेर थालीमा आउँछ त्यो बेला चाहिँ सबै फरक फरक रूपमा हुन्छ, फरक फरक टेस्टमा हुन्छ। अब यसको कारण चाहिँ के होला त?
देखिए, एक दो वजह है। एक वजह यह है कि आप अलग अलग जगह पर बनाए, अलग अलग जगह का अलग अलग पानी होता है, पानी से ज़रूर फर्क पड़ती है। और उससे सबसे बड़ी वजह यह होती है कि आप उस आप की हर रेसिपी में एक इंग्रेडिएंट होता है जिसे मैं कहता हूँ लव, तो आप कितने प्यार से बना रहे हैं। एक और इंग्रेडिएंट होता है जिसे कहते हैं पैशन, कि आप कितने पैशन से वो चीज़ बना रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं। तो अलग अलग इसलिए भी बनता है कि ये डिग्रीज शायद थोड़ी अलग हो, नहीं तो रेसिपी तो सबके पास सेम आ सकती है। और फिर मे बी प्रोफेशनली जो बना रहे होते हैं वो एक दो छोटे प्रोफेशनल सीक्रेट्स हर वक्त होते हैं जो बाहर नहीं निकलते, तो आई गेस ये दो चार कारण होते हैं इसकी वजह से थोड़ा अलग हो जाता है।
संजय जी, तपाईले हामीलाई खानाको बारेमा अत्यन्तै राम्रो राम्रो कुराहरू बताइराख्नु भएको छ, र खाना पकाउने तरिकाहरूको बारेमा पनि तपाईले विशेष जानकारीहरू दिइराख्नु भएको छ। म तपाईँबाट अब यो जान्न चाहन्छु कि के खानाको माध्यमबाट, अझ भनौँ कि पेटबाट दिलसम्म पुग्न सकिन्छ, के मित्रता, प्रेम, स्नेहको सन्देश दिन सकिन्छ, र के सामूहिक भोज जुन चाहिँ हाम्रोतिर धेरै नै प्रचलित छ, के यस्तो सामूहिक भोज गर्नाले एकअर्काप्रतिको भेदहरू मेटेर मानिसलाई नजिक ल्याउन सकिन्छ?
देखिए, खानेको सियासत से, मजहब से, दुश्मनी से, ऐसे किसी चीज से खाने का कोई लेना देना नहीं। खाने का सिर्फ एक काम है, वो प्यार बांटता है। आप चार दुश्मनों को बिठा दें और बीच में आप एक चीज रख लें जो या तो आपको पता हो सबको अच्छी लगती है, और या आप कोई भी अच्छी चीजें बीच में रख लें, फल रख लें, छोड़िए और कोई, वो चारों के चारों उठा के खाएंगे तो वो कहां गई वो दुश्मन। तो खाने से ये होता है कि आपका मौका ही नहीं देता है वो कुछ ऐसा सोचने का कि हमारी दुश्मनी है हमारा ये। खाना सिर्फ प्यार बांटता है, सिर्फ प्यार बांटता है, दोस्तियां बढ़ाता है, दुश्मनियों को खत्म करता है, खुशियां दिलाता है, इट ब्रिंग्स यू स्माइल्स, स्माइल्स ऑन द फेसेस। सो खाने का एक बहुत अपना रोल है और इट कट्स अक्रॉस बाउंड्रीज बिल्कुल। उतना ही नहीं है, एक और चीज मैंने बहुत देखा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आप देखें, कोई समझिए कहीं रास्ते में कोई एक जरूरतमंद चल रहा होता है, कोई भी और होता है इंसान जो थोड़ा सा इस नेचर का होता है, वो कहीं भी रुक जाता है, कुछ लेता है और उसको खाने को देता है। ना वो उसको ये पूछता है कि तू इतना गरीब क्यों है, ना वो उसको बोलता है तू बैठा क्यों है या कुछ, वो उसके लिए खाना लेके उसको दे देता है। तो आप माध्यम देखिए, ये खाना कैसा माध्यम है, ये इट कट्स अक्रॉस वेरियस थिंग्स, वेरियस बॉर्डर्स, पर्सपेक्टिव्स बदल देता है ये इंसान।
तपाईको विचारमा यो जति पनि कश्मीरी खानाको परिकारहरू छन् नि, यो कश्मीरी क्युजिनहरूलाई चाहिँ देश तथा विदेशमा अझ लोकप्रिय बनाउनका निम्ति चाहिँ के गर्न सकिन्छ होला?
म हरगत इस ओपिनियन का रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने जो हमारे देश का क्विजीन है उसको हरगत भार लेना चाहिए। चाहे आप ऑन अ गवर्नमेंट लेवल आप एक ऑल क्विजीन रेस्टोरेंट खोलें इन एवरी बिग सिटी, या आप फेस्टिवल्स कराएं, आप ईयर राउंड कभी एक जैसे कश्मीरी फेस्टिवल करा रहे हैं, आप कल एक साउथ इंडियन कराएं, कल आप एक पंजाबी कराएं, यू नो जितना आप ये करेंगे उतना वो हमारा क्विजीन पब्लिसाइज होगा। एंड द सेम गोज ट्रू विद इन द कंट्री ऑल्सो। अब विद इन द कंट्री तो बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि होटल्स करते हैं, रेस्टोरेंट्स करते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, वैसे भी इंफॉर्मेशन है, ट्रैवल होता है, लेकिन बाहर आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी एक तो ये फेस्टिवल्स या रेस्टोरेंट इनके थ्रू हो, और एक कि जो भी रिलेटेड लोग हो वो टाइम टू टाइम अलग अलग दे उनको बुलाया जाए, वो बाहर आए, वो बात करें वहाँ के लोगों से, कभी कोई मौका हो, कोई सेमिनार हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो, तो हमें हर वक्त ये अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए कि हम कैसे किसी को बोलें कि आप वहाँ आएँ और आप पंजाबी खाने के बारे में बात करें, या इंडियन क्विजीन के बारे में बात करें, या कश्मीरी खाने के बारे में। तो वो ये अपॉर्चुनिटीज़ जैसे आती जाएंगी, ये सब रास्ते खुलते जाएंगे।
संजय जी, कश्मीरी खाना बाहेक चाहिँ भारतको अरू कुन चाहिँ राज्यको खाना चाहिँ तपाईलाई अलि मन पर्छ अथवा तपाईको दिलको एकदमै नजिक छ?
देखिए, हमारा तो मुझे लगता है हमारे तो ये दो तीन नेशनल डिशेज हैं, ये चिकन टिक्का हो गया, दाल मखनी हो गई, नान हो गई, मतलब इन चीज़ों के बगैर तो हम चल ही नहीं सकते। अब ये पंजाबी रहे ही नहीं है, ये डिशेज जो है ये इंडियन हो गई है, यू नो, अदरवाइज देयर सपोज टू बी, समझिए एक दाल मखनी है तो बिल्कुल पंजाबी होनी चाहिए थी, लेकिन अब तो ये बिल्कुल खुल के पूरे देश में आ गई है। जहाँ देखिए इंडियन क्विजीन बहुत फैल गया, बट आई थिंक मैं सादी दाल और नान मुझे मिल जाए वो मेरे लिए सबसे फेवरेट हो जाता है, एंड ऑफकोर्स कभी कभी एक आध डोसा या इडली बहुत अच्छा लगता है।
अब तपाईको मनपर्ने खानाको बारेमा थाहा पाइसकेपछि हामी यो पनि जान्न चाहन्छौँ कि कलिनरी आर्ट अथवा कुकरी स्किल्सको बारेमा चाहिँ भारतको के कस्तो भूमिका रहेको छ, र साथै कलिनरी आर्टको क्षेत्रमा भारतले विश्वलाई के योगदान दिन सक्छ होला?
देखिए, वो सिग्निफिकेन्ट रोल तो तब प्ले करेगा जब वो उसको जब उतना एक्सपोजर मिलेगा। तो मेरे ख्याल से हमारे जहाँ जहाँ दूतावास हैं, जहाँ जहाँ हमारी एम्बेसीज हैं, बिल्कुल चाहे उसकी बाउंड्री पे एज अ पार्ट ऑफ इट, अंदर तो हर एम्बेसी में मुश्किल होता है, हर किसी की भी एम्बेसी में सिक्योरिटी इशूज है, लेकिन एक ऐसा एक कोना होना चाहिए जहाँ बाहर से लोग आ सकें, और हर एम्बेसी, हर इंडियन एम्बेसी में पूरे दुनिया में एक इंडियन रेस्टोरेंट होना चाहिए जहाँ वो जो भी एक मेन्यू ऐसा हो कि उस इंडिया को शोकेस करता है। तो जितने लोग और वो अच्छा पब्लिसाइज्ड हो, ताकि उस पर्टिकुलर कैपिटल सिटी में या जहाँ भी हो वहाँ के लोग वो खाना खाने आए, तो वो आने से टूरिज्म में बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। एक वो, दूसरा हमारे क्विजीन की शान बहुत बढ़ेगी, एंड आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ कोई कैंटीन या कुछ, मैं कह रहा हूँ गुड फाइन डाइन रेस्टोरेंट, जहाँ आपको आप 6-8 डिश दीजिए अपने बिल्कुल जो मास्टर पीसेज होती हैं हमारी इंडियन क्विजीन में, आप वो दीजिए, लेकिन एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट हर एम्बेसी से
र साथै अब विश्व स्तरमा हेर्ने हो भने भारतको खानाहरू अथवा कलिनरी आर्टहरूले विश्वमा एउटा छुट्टै विशेष पहिचान बनाइसक्यो, या अब यो कुरालाई चाहिँ अझ धेरै अगाडि बढाउनु पर्छ?
एब्सोल्युटली, मतलब आपको किसी को ये नहीं बताना पड़ता है आज की तारीख में कि ये इंडियन खाना है, मतलब चाहे आप इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, US में हो, तो आप देखेंगे कि वहाँ के लोग वो तो चाहे टेक अवे करें या ऑर्डर इन करें या रेस्टोरेंट डाइनिंग के लिए जाएं, बड़े मन से बनाते हैं आज हम इंडियन खाना खाने जा रहे हैं।
संजय जी, यस्तो मानिन्छ विशेष गरी विदेशी नागरिकहरूले कि भारतमा चाहिँ एकदमै धेरै स्पाइसेसहरू युज गरिन्छ अथवा भारत चाहिँ एउटा धेरै स्पाइसेसहरू खाने देश हो भनेर। सो तपाईँ चाहिँ विदेशको यात्रामा जानुभएको बेलामा, फुड फेस्टिभल्सहरू भएको बेलामा चाहिँ भारतीय खानाको बारेमा तपाईँले कुनै यस्तो रोचक प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ त?
मैले बहुत दफा ऐसी बातें हुई हैं जहाँ मैं ये बहुत लोगों को ये कह चुका हूँ कि ये जो स्पाइस बात है ना, ये बड़ी मिसअंडरस्टूड चीज़ है, क्योंकि हम जब स्पाइसी कहते हैं तो हम फर्स्ट चीज़ आपके दिमाग मन में क्या आती है, तीखा। तो लेकिन अगर आप सौंफ पाउडर यूज़ करें या यू नो जिंजर पाउडर यूज़ करें या आप इलायची यूज़ करें या लौंग यूज़ करें दालचीनी यूज़ करें, वो चीज़ें ही इतनी अलग हैं। तो वो सिर्फ एक लाल मिर्च होती है जो इसको जिसने विच इज़ टेकन ओवर एवरीथिंग। बट हम स्पाइसेस के बारे में बहुत बोलते हैं और अब मैं देखते आया हूँ कि अब स्पाइसेस के बारे में लोग बड़े अवेकन हुए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग इन एंड लुकिंग एट अदर थिंग्स। जैसे हमारी एक डिश है बहुत पॉपुलर डिश है कश्मीरी पंडित कुजीन की, उसे मटन कलिया कहते हैं। इट इज़ येलो इन कलर। तो वो एक बार मेरी किसी से बात हुई थी, मैंने कहा तो इट टेक्स टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पाइसेस। मैंने कहा क्या? मैंने कहा टर्मरिक। तो उसमें हल्दी जाती है और उसमें इलायची जाती है। तो अब अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस मैंने उनको कहा वो माइल्ड है, तो उन्होंने कहा माइल्ड कैसे हो सकती है, इसमें तो स्पाइसेस है, हमने लिखा है ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस। तो दैट इज़ हाउ वी स्टार्ट। कुछ हमारा काम है समझाने का, कुछ उनका काम है समझने का। तो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता वो हो रहा है। आई थिंक जितनी भी फ्रेटर्निटी है हमारी सारी, जितनी इंडस्ट्री है, और अब इंटरनेट पे इतना ये आ जाता है कि ये सिर्फ एक दिमाग में ये बात होती है कि स्पाइसी जब हम कहते हैं, जब रेस्टोरेंट में भी लिखा होता है स्पाइसी, मीडियम स्पाइसी, नॉट स्पाइसी, तो वो भी जो होता है वो सिर्फ वो उसके साथ एक मिर्ची बनी होती है। तो वो आई थिंक वो जितना ये स्पाइसी की बात होती है वो सिर्फ रेड चिली से रिलेटेड होती है। बड़ा आस्ते आस्ते जिन जिन जो जो लोग खाने लगते हैं देन दे अंडरस्टैंड।
संजय जी तपाईसँग कुराकानी गर्दा गर्दा यो एउटा कुरा चाहिँ मेरो मनमा आइरहेको थियो कि तपाईले कुराकानीको क्रममा भारतको अन्य सेलिब्रिटी शेफहरूको पनि उल्लेख गर्नुभयो। र युजली चाहिँ हाम्रो भारतीय घरहरूमा, हाम्रो भारतीय भान्सामा चाहिँ महिलाहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो आमा दिदी बहिनीहरू नै हाम्रो भान्साको इन्चार्ज हुनुहुन्छ। तर जब हामी राष्ट्रिय स्तरमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सेलिब्रिटी सेफहरू देख्छौँ त्यहाँ सबै पुरुषहरू हुनुहुन्छ। सो यसको बारेमा पनि तपाईँको विचार भनिदिनुहोस् न।
नहीं, अगर आप आजकी तारिकमा, अगर आप आजकी तारिक क्या, मैं तो 20 साल पहले भी कह रहा हूँ, आप अगर होटल्स में जाए तो आपको बहुत कम, मतलब है इन परसेंटेज बहुत कम, बट आपको लेडी शेफ्स मिलती हैं और इंटरनेशनली भी अब आई हैं। बट आई थिंक जो प्रोफेशनली जो ये काम है ये थोड़ा सा और रगड़ है। और जब बड़े बड़े 200 लोगों के लिए खाना बनाने के पतीले उठाने पड़ते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आई थिंक वो थोड़ा वो रह जाता है। बट आप देखेंगे कि कितने होम शेफ्स हैं जो प्रोफेशनली काम करते हैं, घर से खाना बना के जो बाहर जाता है, वो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लेडीज हैं।
र यस्तो मान्यता पनि छ कि महिलाहरूले आफ्नो हातले परिकार बनाउँदा त्योभन्दा राम्रो त अरू कसैले बनाउनै सक्दैन,
उनसे अच्छा तो बनी नहीं सकता। आप हमारी माँ के हाथ से खाना अच्छा बनी नहीं सकता और किसी से, हम लोग तो मतलब उनके पास भी नहीं जा सकते, करिब भी नहीं होता खाना।
हजुर हजुर पक्कै पनि। संजय जी म साथसाथै तपाईको सम्पूर्ण प्रशंसकहरूले त तपाईलाई एउटा सेलिब्रिटी शेफको रूपमा मात्र चिन्दै आएका छौँ, तर अब तपाईँ संजय रायना द सेलिब्रिटी शेफ बाहेक तपाईँले आफूले आफूलाई डिस्क्राइब गर्नुपर्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? सेलिब्रिटी शेफ संजय रायना अरू के हो त? ऊ एउटा सिङ्गर हो, ऊ एउटा ट्राभलर हो, ऊ एउटा राइटर हो, ऊ एउटा फिलान्थ्रोपिस्ट हो र ऊ एक समयमा रेडियो प्रेजेन्टर पनि भइसकेको हो।
जी मैंने अपने यू नो इन द लास्ट इयर्स ऑफ द ऑफ स्कूल और कॉलेज के कुछ पहले सालों में मैंने रेडियो कश्मीर में, युवानी दिल्ली में काफ़ी थोड़ा बहुत काम किया है। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि एक म्यूज़िक कंपनी ने मुझे साइन किया, तो मेरे कोई 7-8-10 एल्बम निकले हुए हैं वो हुए। तो 8 से मैं बहुत करीब हूँ। तो चाहे वो कलरी आर्ट हो या बाकी क्रिएटिव आर्ट हो, म्यूज़िक हो, इवन इफ इट्स पेंटिंग, तो ये चीज़ें और हर वक्त एक चीज़ से अगर आप कभी स्ट्रेस्ड हो थोड़े से तो आप दूसरा आर्ट उस टाइम 15 मिनट ले पकड़ लें तो आपको वो बिल्कुल रिलैक्स कर देता है।
संजय जी म यो कुरामा आउन चाहन्थे र मैले भर्खरै पनि तपाईको फिलान्थ्रोपिस्ट रूपको उल्लेख गरेको थिए र म तपाईबाट यो कुरा पक्कै पनि जान्न चाहन्छु कि केही महिना अगाडि भारतमा COVID-19 को दोस्रो लहरले कहर मचाएको थियो र त्यसको कारण हामी सबैले एकदमै गहिरो एकदमै दुःख लाग्दो र अत्यन्तै नकारात्मक प्रभावको सामना गर्नु परेको थियो र त्यस समयमा चाहिँ तपाईले एउटा अत्यन्तै अनौठो एउटा विशेष पहल गर्नुभएको थियो जसको नाम थियो प्लाज्मा NCR र म चाहन्छु म र साथसाथै हाम्रो यो कन्भर्सेसन सुनेर बस्नुभएको सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई यसको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न।
देखिए जी, मैं हर वक्त ये समझता हूँ कि आपकी जो भी क्षमता हो, आपकी जो रिसोर्स केपेबिलिटी एबिलिटी हो, उसके विद इन आपसे अपनों के लिए, जब मैं अपनों कह रहा हूँ तो मैं कहता हूँ कि अपने सारे जितने होते हैं हमारे देश के, उनके लिए आप जो कुछ कर सको आपको करना ज़रूर चाहिए। और कहीं आपके मन में कभी ये ना रहे कि मैं कुछ कर ना सका, और इसे एक आदत बनाने लीजिए। तो जब ये सेकेंड वेव खासकर आई तो इट वॉज टेरेबल इन हम दिल्ली गुड़गांव में NCR में। तो मेरे और मेरे एक मित्र ने मिलके हम ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं, तो ये डिसाइड किया कि सडनली जिसको देखें वो प्लाज्मा ढूंढ रहे थे और लोगों को समझ नहीं आ रहा था। हम देख रहे थे कि पागल हो रहे हैं लोग, मर रहे हैं वो। अब हम तो इतना जानते हैं कि डॉक्टर ने कहा है प्लाज्मा देना है, तो अटेंडेंट क्या कहेगा, वो बेचारा बस वो ढूंढने में लगेगा। तो हमने ये एक ट्विटर हैंडल बनाया प्लाज्मा NCR, और हमने सिर्फ ये कहा कि ये एक फॉर्मेट है, आपको अगर ज़रूरत है तो आप इस फॉर्मेट को फिल करके हमें मैसेज कर दीजिए। हम कोई फ़ोन कॉल, क्योंकि टाइम नहीं हो रहा था तो कोई फ़ोन कॉल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आप हमें ये मैसेज करें और हम आप तक प्लाज्मा पहुँचवा देंगे। तो हम दो लोग थे तो, और हमने अपना काम कुछ ऐसे डिवाइड किया कि एक डोनर्स ढूंढ के उनको पहुंचवाता था वहां, और एक ये मैसेजेस लेके इनको एम्पलीफाई करके लोगों को कि ये चाहिए वो करवा देता था, तो डोनर मिलता था और फिर इनको इन्फॉर्म करते थे कि आपका काम हो गया। तो आई थिंक हमने कुछ नहीं तो NCR में कम से कम 5,000-7,000 लोगों की उस टाइम इंस्टेंट इस चीज़ में मदद की होगी। उसको छोड़ के फिर आस्ते आस्ते जितने पास पास की सिटीज़ थी वहाँ भी वो शुरू हो गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि डॉक्टर्स ने बोला कि प्लाज्मा का यूजेज इज नॉट राइट, तो हम तो बेसिक फॉलो कर रहे हैं, हमने वो बंद कर दिया। तो हमने फिर चाहे वो मास्क थे, सैनिटाइजर्स थे, सिलेंडर्स थे, कॉन्सेंट्रेटर्स थे, जो हो सकता था जहाँ जहाँ कश्मीर तक, हमने जितना हो सकता था।
पक्कै पनि निश्चित रूपमा तपाईँले चाहिँ एकदमै अद्भुत र अत्यन्तै उल्लेखनीय कार्य गर्नुभएको छ र यसको लागि हामी तपाईँ र तपाईँको पुरै टिमलाई एकदमै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। र त्यसै गरी हामी हाम्रो कुराकानीको पनि लगभग अन्त्यतिर पुगिसक्यौँ। तपाईँसँग कुराकानी गरेर हामीले धेरै कुराको बारेमा जानकारी लिने अवसर पायौँ अनि एकदमै खुसी पनि लाग्यो। र अन्त्यमा नेपालको नागरिकहरूलाई तपाईँको तर्फबाट केही सन्देश राखिदिनुहोस् न।
आपको बोलने ही वाला था कि मैं ये मैं अपने नेपाली भाई बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तानियों ने नेपाल को हर वक्त अपना माना है। मतलब मुझे याद है बचपन से आज तक हमने कभी कोई फर्क ही नहीं समझी है, हिंदुस्तानी नेपाली है, नेपाली हिंदुस्तानी है, हमारी भाषा एक है, हमारा खाना खा पीना एक है, हमारी रहन सहन एक है। तो आप हमारे दिल में बसते हैं और आप हमारे दिल में बसते रहे।
संजय जी, आज तपाईसँगको कुराकानीको क्रममा हामीले धेरै धेरै नयाँ नयाँ अनि रोचक कुराहरू थाहा पायौँ र साथै हाम्रो कुराकानी पनि एकदमै रमाइलोसँग भयो। तपाईँले हाम्रो लागि टाइम दिनुभयो, आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि हामी अत्यन्तै आभारी छौँ। र आज तपाईँ हाम्रो यो पोडकास्टमा जोडिदिनु भयो र साथै भारतीय दूतावाससँग पनि जोडिदिनु भयो, त्यसको लागि पनि तपाईँलाई विशेष धन्यवाद।
मैं आप सबको धन्यवाद।
नमस्कार।
नमस्कार।